एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ी मुश्किल लगे।
हाँ, अकेडमिक टाइप की।
बिल्कुल, पर असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फिनोमिनोलॉजी की। फिनोमिनोलॉजी, जिसे हिंदी में घटना क्रिया विज्ञान भी कहते हैं शायद।
हाँ, कह सकते हैं। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे दार्शनिक चैड इंजलैंड और उनकी मतलब उनकी किताबों से निकली हुई कुछ अहम बातें।
फिनोमिनोलॉजी, हाँ, ये शब्द पहली बार सुनने वालों को थोड़ा भारी लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं।
सही कहा, पर इसका जो मूल विचार है वो असल में बहुत सरल है। ये हमारे जिए हुए अनुभव यानी लिव्ड एक्सपीरियंस, उसको समझने की एक कोशिश है।
अच्छा,
ये जानने का प्रयास कि दुनिया हमें वास्तव में कैसी महसूस होती है, हमारे सिद्धांतों से पहले, हमारी जो पहले से बनी राय है या वैज्ञानिक विश्लेषण है, उन सबसे भी पहले।
और ये आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? मतलब सोचिए ना, हम सब कितनी बार स्क्रीन के जरिए ही दुनिया को देख रहे होते हैं ना।
हाँ, या फिर डेटा पॉइंट्स के हिसाब से चीजों को समझते हैं।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो जो सीधा कच्चा अनुभव होता है वो पीछे छूट जाता है।
हाँ, तो फिनोमिनोलॉजी हमें उसी अनुभव पर ध्यान देने का एक तरह से न्योता देती है।
तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये दुनिया को नए सिरे से देखने का एक तरीका है, एक हुनर सीखने जैसा है।
क्या हम वाकई अपने अनुभवों पर ध्यान देते हैं? ये सवाल है।
और यही सवाल हमें चैड इंजलैंड तक ले जाता है। वे डैलस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और उनकी विशेषज्ञता फिनोमिनोलॉजी, हर्मेन्यूटिक्स यानी व्याख्या के सिद्धांत और धर्म के दर्शन में है।
हाँ, और एंजलैंड की खासियत ये लगती है कि वे सिर्फ मतलब मुश्किल विषयों के विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें आसान बनाने में भी माहिर हैं। उन्होंने हसरल, हाइडेगर, मेरलापोंटी जैसे जो बड़े दार्शनिक हुए हैं,
हाँ, बड़े नाम हैं ये सब,
उनके विचारों को छात्रों और आम पाठकों के लिए काफी सुलभ बनाया है। वो जैसे अकादमिक दुनिया के अलग अलग खेमों के बीच एक पुल बनाने का काम करते हैं।
और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो फिनोमिनोलॉजी को सिर्फ फिलॉसफी की एक बंद गली नहीं मानते।
अच्छा,
वो इसे मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइंस, एआई, नैतिकता, इन सब एरियाज के लिए भी उतना ही अहम मानते हैं।
दिलचस्प।
उनका जोर इस बात पर है कि फिनोमिनोलॉजी सिर्फ थ्योरीज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने और उसमें शामिल होने का एक प्रैक्टिकल स्किल है,
एक व्यवहारिक कौशल जिसे सीखा जा सकता है।
हाँ, जिसे हम सीख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो फिर उनकी किताब या किताबों का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, अगर संक्षेप में कहें तो?
संक्षेप में, ये 20वीं सदी का जो ये प्रभावशाली दार्शनिक आंदोलन रहा है फेनोमेनोलॉजी, उसे रहस्य के पर्दे से बाहर निकालना है
और दिखाना है कि आज भी क्यों मायने रखता है।
और इसका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, बताइए।
एक तरफ तो ये हमें याद दिलाता है कि फेनोमेनोलॉजी कोई मतलब धुंधली सी एकेडमिक बहस नहीं है, बल्कि दुनिया से सीधे जुड़ने का एक जरूरी कौशल है, उस दुनिया से जैसा हम उसे असल में अनुभव करते हैं। ये हमें आधुनिक जीवन की भागदौड़ और अमूर्तता से परे अपने ठोस जीवंत अनुभव से फिर से जोड़ता है।
बिल्कुल, जैसे हम खो गए हों और ये रास्ता दिखा रहा हो।
हाँ, कुछ वैसा ही।
और दूसरी तरफ ये हमें सोचने का एक नया रास्ता भी दिखाता है।
देखिए, हम अक्सर दो एक्सट्रीम पर सोचते हैं, है ना?
कैसे?
या तो ये कि भाई जो दिख रहा है वही परम सत्य है, जिसे नाइव रियलिज्म कहते हैं।
हाँ, जो देखा सो माना।
या फिर हम सोचते हैं कि अरे, हम तो असली सच्चाई कभी जान ही नहीं सकते, वो स्केप्टिकल आइडियलिज्म वाला मामला। तो फिनोमिनोलॉजी क्या कहती है?
फिनोमिनोलॉजी इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता सुझाती है। ये कहती है कि अनुभव की अपनी एक संरचना है, अपना एक सच है, जिसे हम ध्यान से देखकर समझ सकते हैं।
अच्छा, तो इस पूरी चर्चा का, हमारी इस ज्ञान गोष्ठी का मिशन क्या है?
लक्ष्य है फिनोमिनोलॉजी की विधि को समझना, कैसे अपने पूर्वाग्रहों, अपनी बनी बनाई धारणाओं को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर,
साइड में रखे,
हाँ, साइड में रखकर ध्यान से देखें कि चीजें हमारे चेतना में, हमारे अनुभव में कैसे प्रकट होती हैं। हजल का वो मशहूर नारा याद है?
हाँ, चीजों की असलियत की ओर, टू द थिंग्स देमसेल्व्स।
बिल्कुल, तो ये हमें सिखाता है कि ये कैसे करें।
चलिए इसी कैसे पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कुछ जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं बिना बहुत ज्यादा मुश्किल शब्दों में उलझे।
हाँ, प्लीज।
पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार है इरादा परखता, इंटेंशनैलिटी।
इंटेंशनैलिटी, इरादा परखता, ठीक है।
हाँ, ये हसल की बड़ी खोज की। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी चेतना हमेशा किसी चीज की चेतना होती है। हम सिर्फ होश में नहीं होते, हम हमेशा किसी चीज के प्रति होश में होते हैं।
अच्छा।
देखना मतलब कुछ देखना, सोचना मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, महसूस करना मतलब किसी चीज को महसूस करना। चेतना एक खाली डब्बा नहीं है,
बल्कि
एक टॉर्च की तरह है जो हमेशा बाहर की ओर, दुनिया की ओर रोशनी डालती है।
ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर आप कह रही हैं ये क्रांतिकारी विचार है।
हाँ, क्योंकि इसने सदियों पुरानी उस दार्शनिक गुत्थी को सुलझा दिया कि हमारा मन जो अंदर है और दुनिया जो बाहर है, ये आपस में जुड़ते कैसे हैं।
हाँ, ये तो बड़ा सवाल रहा है फिलॉसफी में।
फिनोमिनोलॉजी कहती है अरे वो कभी अलग थे ही नहीं, चेतना अपनी प्रकृति से ही दुनिया से जुड़ी हुई है। मन और दुनिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हर अनुभव में एक साथ दिए गए हैं।
वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल, और इसी चीज को ठीक से देखने के लिए फिनोमिनोलॉजी एक तरीका सुझाती है जिसे कहते हैं इपॉके
ओके।
या कोष्ठकन, ब्रैकेटिंग।
इपॉके, कोष्ठकन, ये थोड़े अजीब शब्द हैं।
हाँ है, पर मतलब है अपनी सामान्य मान्यताओं पर पॉज बटन दबाना।
पॉज बटन
मतलब ये कि हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ मानकर चलते हैं, कि ये कुर्सी ठोस है, कि सूरज पूरब से उगता है, कि विज्ञान सच बताता है ना?
हाँ, ये तो हम रोज ही करते हैं, इसे ही प्राकृतिक रवैया या नेचुरल एटीट्यूड कहते हैं शायद।
बिल्कुल, तो इपॉके का मतलब है इन सब मान्यताओं को, दुनिया के अस्तित्व या उसके बारे में हमारे सिद्धांतों को थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में रख देना।
शक करना?
नहीं, शक करना नहीं, बस उन्हें एक तरफ रख कर सिर्फ इस पर ध्यान देना कि अनुभव खुद कैसा है, जस का तस।
अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक अनुशासन हुआ, जैसे हम ध्यान में करते हैं, माइंडफुलनेस में।
हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे ध्यान में हम विचारों को बिना जज किए देखते हैं, वैसे ही यहाँ हम अपनी मान्यताओं को एक तरफ रखकर अनुभव को जस का तस देखने की कोशिश करते हैं,
ताकि हम देख सकें कि हमारी चेतना दुनिया को कैसे पकड़ती है, कैसे उसे आकार देती है, बिना हमारी मान्यताओं के फिल्टर के।
एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए वो घन वाली बात आपने बताई थी।
हाँ, क्यूब।
हम एक बार में 3-4 सतह ही देखते हैं, पर अनुभव पूरे घन का होता है। इपॉके हमें ये देखने में मदद करता है कि ये पूरापन कैसे बनता है हमारे अनुभव में।
समझ गया।
तो ये पहला कदम है, अपनी चेतना की दुनिया से जुड़ी प्रकृति, इंटेंशनैलिटी को पहचानना और उसे साफ साफ देखने के लिए मान्यताओं पर पॉज लगाना, इपॉके।
ठीक है, अब सवाल उठता है कि अनुभव होता कहाँ है, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है।
यहीं पर दो और महत्वपूर्ण विचार आते हैं, जिया हुआ शरीर, लिव्ड बॉडी, और जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड।
जिया हुआ शरीर, लिव्ड बॉडी।
हाँ, शुरू करते हैं जिए हुए शरीर से। ये विचार खास तौर पर मर्लो पोंटी ने विकसित किया। उन्होंने डेकार्त की उस सोच को चुनौती दी कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं।
हाँ, डेकार्त सोचते थे कि शरीर एक मशीन जैसा है और मन उसका ड्राइवर, गोस्ट इन द मशीन वाला आइडिया।
सही, पर फिनोमिनोलॉजी कहती है नहीं, हमारे पास शरीर वैसे नहीं है जैसे हमारे पास कार होती है,
बल्कि
हम ही हमारा शरीर है। ये दुनिया में हमारे होने का जरिया है, हमारा सोचना, महसूस करना, दुनिया को समझना, सब कुछ हमारी शारीरिकता से जुड़ा है। ये सिर्फ मांस हड्डी का ढांचा नहीं है।
तो क्या है?
ये वो जीवित केंद्र है जिससे हम दुनिया का अनुभव करते हैं और उसमें काम करते हैं।
इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकती हैं?
बहुत सारे हैं। सोचिए, जब आप टाइपिंग सीखते हैं, शुरू में हर उंगली कहाँ रखनी है ये सोचना पड़ता है ना?
हाँ, बहुत ध्यान देना पड़ता है।
पर धीरे धीरे आपका शरीर सीख जाता है, आपकी उंगलियां खुद ब खुद सही बटन दबाती हैं। ये शरीर का अपना ज्ञान है जो सोचने से पहले काम करता है।
हाँ, मसल मेमोरी जिसे कहते हैं।
या कोई खेल खेलना, आप हर कदम कैलकुलेट नहीं करते, आपका शरीर लय में आ जाता है। यही जिया हुआ शरीर है, दुनिया के साथ हमारा सीधा शारीरिक व्यावहारिक रिश्ता। सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, शरीर का दुनिया के साथ तालमेल बिठाना भी है।
वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और ये जिया हुआ शरीर अकेला नहीं है, आप कह रही थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक साझा दुनिया में रहता है जिसे हुसर्ल ने जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड या लेबन्सवेल्ट कहा।
जीवन जगत, लेबन्सवेल्ट।
हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की जानी पहचानी आम दुनिया है। सड़कें, घर, भाषा, रीति रिवाज, वो सब कुछ जिसे हम सामान्य मानकर चलते हैं, ये वो साझा मंच है जिस पर हम सब अपने अनुभव जीते हैं।
ठीक है, पर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
क्योंकि यही सारे अर्थों का आधार है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसी साझा दुनिया में रहने वाले वैज्ञानिकों द्वारा बनाए और समझे जाते हैं। विज्ञान इस जीवन जगत से निकला एक अमूर्तन है, एक एब्स्ट्रैक्शन है, उसका विकल्प नहीं। फिनोमिनोलॉजी हमें याद दिलाती है कि सिर्फ वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नज़रिए से दुनिया को देखना अधूरा है। हमें उस साझा, जीती जागती दुनिया को नहीं भूलना चाहिए जहाँ से सारा ज्ञान शुरू होता है।
तो हमने देखा कि चेतना हमेशा दुनिया की ओर निर्देशित होती है,
इंटेंशनैलिटी।
हाँ, जिसे साफ देखने के लिए हमें अपनी मान्यताएं परे रखनी होती हैं।
इपोखे, बिल्कुल।
और ये अनुभव हमारे जिए हुए शरीर, लिफ्ट बॉडी के माध्यम से एक साझा जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड में होता है। ये सब कैसे जुड़ा है ये देखना वाकई दिलचस्प है।
हाँ, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाइडेगर और सार्थ्रे जैसे विचारक हमें दिखाते हैं कि कैसे ये अनुभव हमारे अस्तित्व, हमारी स्वतंत्रता और हमारी जिम्मेदारियों से जुड़ा है।
अच्छा।
या लेविनास हमें बताते हैं कि कैसे दूसरे इंसान का चेहरा, फेस, हमें सीधे नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है, किसी नियम या सिद्धांत से पहले। समय को भी हम कैसे अनुभव करते हैं, एक निरंतर प्रवाह के रूप में जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य गुंथे हुए हैं, ये भी फेनोमिनोलॉजी का एक अहम पहलू है। लेकिन शायद इन मुख्य विचार, इंटेंशनैलिटी, इपोके, लिव्ड बॉडी, लाइफ वर्ल्ड को समझना ही इस देखने के कौशल की अच्छी शुरुआत है।
हाँ, लगता तो है इन मूल स्तंभों को समझने से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो मुख्य संदेश क्या होंगे, की टेकअवेज?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और बुनियादी संदेश है हमारे जीवंत पहले पुरुष के अनुभव की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस। सारा ज्ञान, सारा अर्थ यहीं से शुरू होता है।
ठीक है।
किसी भी सिद्धांत या मॉडल से पहले वो दुनिया है जैसी वो हमें सीधे अनुभव में दिखती है, और ये बात कहीं ना कहीं भारत में बहुत स्वाभाविक लगती है ना, जहाँ अनुभव और परंपरा को अक्सर किताबी ज्ञान जितना ही महत्व दिया जाता है।
बिल्कुल, अनुभवजन्य ज्ञान। दूसरा,
तथाकथित वस्तुनिष्ठता की आलोचना। मतलब फेनोमिनोलॉजी विज्ञान का विरोध नहीं करती, पर इस दावे को चुनौती देती है कि सिर्फ वैज्ञानिक विवरण ही असली दुनिया है।
अच्छा।
विज्ञान खुद उस समृद्ध साझा जीवन जगत पर टिका है। ये हमें याद दिलाता है कि डेटा और आंकड़ों के अलावा भी सच्चाई के कई रंग हैं। जैसे किसी गांव के मेले का माहौल, उसे नंबरों में कैसे बांधेंगे, पर क्या वो कम वास्तविक है? नहीं ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या है?
तीसरा, चेतना कोई निष्क्रिय रिकॉर्डर नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता है। ये इरादा परकता या इंटेंशनैलिटी के जरिए दुनिया को लगातार अर्थ देती है, उसे संरचित करती है। ये हमें अपनी ही सोच और नज़रिए के प्रति ज़्यादा सजग बनाता है। हम दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, उसे समझने के क्रम में बनाते भी हैं।
और चौथा?
चौथा, जिसे हमने अभी समझा, हमारा शरीर ही हम हैं, एम्बॉडीमेंट। हमारा सोचना, महसूस करना, दुनिया में होना, ये सब हमारी शारीरिकता से अविभाज्य है। योग और आयुर्वेद जैसी हमारी अपनी परंपराएं भी तो मन और शरीर की इसी एकता पर सदियों से जोर देती आई हैं।
सही कहा। ये सारे सूत्र मिलकर हमें दुनिया को देखने का एक ज्यादा समग्र, ज्यादा मानवीय तरीका सुझाते हैं। और एंजललैंड की खूबी यही है कि वो इन गहरे विचारों को बड़े सहज ढंग से पेश करते हैं। कुछ विचार तो सूत्र वाक्यों की तरह याद रह जाते हैं।
हाँ, जैसे वो पहला आह्वान, चीजों की असलियत की ओर। ये महज एक नारा नहीं है।
नहीं,
ये एक निमंत्रण है कि हम अपनी बनी बनाई धारणाओं और सिद्धांतों के चश्मे को उतारकर ईमानदारी से उस दुनिया को देखें जिसका हम वास्तव में अनुभव करते हैं। अपने अनुभव पर भरोसा करना सीखें।
या फिर चेतना के बारे में वो रूपक, चेतना एक बंद डिब्बा नहीं बल्कि एक सर्च लाइट है जो हमेशा बाहर की ओर रोशनी डालती है। ये इंटेंशनैलिटी का सार है, मन और दुनिया का अटूट बंधन। हम कभी अकेले अपने अंदर बंद नहीं होते।
बिल्कुल। और शरीर के बारे में वो बात, हमारे पास शरीर वैसे नहीं है जैसे हमारे पास कार होती है, हम ही हमारा शरीर है। ये डेकार्त के भूत को भगाने जैसा है।
हाँ बिल्कुल।
ये हमारे अस्तित्व की जमीनी हकीकत पर जोर देता है। हमारा ज्ञान, हमारी भावनाएं, हमारी क्रियाएं सब इसी जीवित शरीर से जुड़ी हैं।
ये विचार सोचने पर मजबूर तो करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? क्या ये सिर्फ दार्शनिकों के सोचने की बातें हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो फिनोमिनोलॉजी की खूबसूरती है। इसके व्यावहारिक पहलू बहुत गहरे हैं। सोचिए, व्यक्तिगत विकास के लिए
कैसे?
वो ईपोके या मान्यताओं पर पॉज लगाने का अभ्यास ये सचेतन या माइंडफुलनेस जैसा ही तो है। जब कोई तेज भावना उठे या कोई पक्का विचार मन में आए तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे बस देखना, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसा महसूस हो रहा है, इससे आत्म जागरूकता कितनी बढ़ सकती है।
ये तो उपयोगी लग रहा है। और रिश्तों में?
रिश्तों में तो बहुत ज्यादा। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति के लिए दुनिया कैसी है, उसका अपना जीवन जगत कैसा है, बजाय इसके कि हम अपनी धारणाएं उस पर थोप दें।
ये तो हम अक्सर करते हैं।
ये सहानुभूति की जड़ है। बस ये पूछना, तुम्हारे लिए अनुभव कैसा है, इससे कितनी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। दूसरों को चीजों की तरह नहीं बल्कि अपने जैसे अनुभव करने वाले इंसानों की तरह देखना।
और सीखने और सिखाने में भी इसका महत्व है, आपने कहा था।
हाँ, ये समझना कि सीखना सिर्फ जानकारी रटना नहीं बल्कि अपने शरीर और दुनिया के बीच एक नया तालमेल बनाना है। शायद इसीलिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इतना असरदार होता है। गणित जैसे विषय को भी सिर्फ फॉर्मूलों से नहीं बल्कि स्पेस और क्वांटिटी के अनुभव से जोड़ना।
और आज के टेक्नोलॉजी और एआई के दौर में
यहाँ भी ये सवाल उठाना कि क्या बिना शरीर, बिना साझा जीवन जगत के असली समझ या चेतना संभव है? ये हमें ज्यादा मानवीय तकनीक बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम ऐसे एआई बना सकते हैं जो हमारे शारीरिक संकेतों, हमारी भावनाओं, हमारे साझा अर्थों को समझ सके? ये बड़े सवाल हैं।
तो कुल मिलाकर इन किताबों और फिनोमेनोलॉजी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे लिए शायद ये है कि हमारे रोजमर्रा के साधारण से दिखने वाले अनुभवों में भी अर्थ की गहरी संरचनाएं छुपी होती हैं। जरूरत है बस ध्यान से, बिना पूर्वाग्रह के देखने की। फिनोमेनोलॉजी हमें वो नजर और वो तरीका देती है। ये अनुभव को गंभीरता से लेना सिखाती है।
और मेरे लिए सबसे आकर्षक बात ये रही कि चेतना और दुनिया को अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं है, वे तो हर पल, हर अनुभव में एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये सोच ही बहुत सारी उलझनों को सुलझा देती है। और ये जानना कि हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि अपने अनुभव के सह निर्माता हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है ना।
सच कहा। और अंत में एंजेली लैंड हमें याद दिलाते हैं कि फिनोमेनोलॉजी सिर्फ एक अकादमिक खेल नहीं है।
नहीं,
ये जीने का, दुनिया से जुड़ने का एक तरीका है। ये हमें आज के दौर की भागदौड़, अलगाव और अमूर्तता के बीच खुद से, दूसरों से और इस दुनिया से ज्यादा गहराई, ज्यादा स्पष्टता और शायद ज्यादा आश्चर्य के साथ फिर से जुड़ने का एक रास्ता दिखा सकता है।
ये वाकई एक शक्तिशाली देखने का कौशल है।
हाँ, अब सवाल यह है कि क्या हम इस कौशल का अभ्यास करने को तैयार हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।